बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिस्र का नया आइन और सियासी कशमकश। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, मिस्र में सदर मुर्सी के आईनी आर्डिनेंस के जारी होने के बाद शुरू होने वाली सियासी कशमकश रोज बरोज शदीदतर होती जा रही है। सदर मुर्सी ने नए आईन पर रेफरेंडम की तारीख का ऐलान कर दिया है, 15 दिसंबर को रेफरेंडम होगा। सदर मुर्सी के हामियों ने इसकी हिमायत का ऐलान किया है, जबकि मुखालिफिन ने नए आईन के मसौदे को मुस्तरद करते हुए रेफरेंडम के बायकाट का ऐलान किया है। यह सियासी कशमकश मुल्क को किस नहज पर ले जा रही है? कश्मकश में शिद्दत का नतीजा क्या होगा और मुखालिफीन क्या चाहते हैं? आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम बातों का जायजा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप हमारी ये रिपोर्ट मुलाहजा फरमाएं।
मिस्र में नई सियासी कश्मकश का आगाज उस वक्त हुआ जब सदर मोहम्मद मुर्सी ने एक आर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत मुल्क के सदर के फैसले हतमी और उन्हें किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सदारती फरमान जारी होने के बाद मुल्क भर में उनके मुखालफीन ने मुजाहरे शुरू कर दिए और मुल्क की जुडिशियल काउंसिल ने, जिसमें ज्यादातर साबित दौर के जजों की अक्सरियत है, इस पर खुलकर एतराज किया। मुजाहरों के बाद मोहम्मद मुर्सी के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में मजकूरा आर्डिनेंस को आरजी करार दिया गया और कहा कि यह आर्डिनेंस मुल्क में नए आईन की मंजूरी और इसके इतलाक के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन सदर मुर्सी के मुखालफीन ने उनकी इस वजाहत को कबूल नहीं किया और मुजाहरों का सिलसिला जारी रखा, जो तहाल जारी है। दूसरी जानिब सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों के मुजाहरे भी जारी रहे और कई शहरों में हुकूमत के हामियों और मुखालफीन के दरमियान झड़पें भी हुई। दरअसल सदर मुर्सी को इस बात का खौफ था कि कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की जुडिशियल काउंसिल नई आइन साज असेंबली को उसका काम मुकम्मल होने से पहले ही मुअत्तल कर दे, जैसा कि वो इससे पहले मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट के साथ कर चुकी है, जिसमें इस्लामी रुझान रखने वाली सियासी जमातों को अक्सरियत हासिल थी। आइन साज असेंबली के पास अपना काम मुकम्मल करने के लिए 12 दिसंबर तक का वक्त था, जिसके बाद कोर्ट मुदाखलत कर सकती थी। लिहाजा सदर मुर्सी ने इस बात को जरूरी समझा कि उनके पास इतने इख्तियार होना चाहिए कि वो आइन साज असेंबली का काम मुकम्मल होने तक उसे तहफ्फुज फराहम कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि अब जबकि आइन साज असेंबली ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और नए आइन का मुसविदा सदर मोहम्मद मुर्सी के पास तौसीद के लिए भेज दिया गया है, जिसे इस्तिसबाब राय के लिए अवाम ही के सामने रखा जाएगा, मुखालफीन की जानिब से मुजाहरों और एहतजाज का सिलसिला जारी रखने की वजूहात क्या हैं और वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से मिस्र में इनकलाबी तहरीक के दिनों जैसी ही सूरत हाल पैदा हो गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुल्क के साबित डिक्टेटर हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीक के दौरान थी, कि जब पूरा मुल्क उठ खड़ा हुआ था। खास तौर पर यह सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है कि सदर मोहम्मद मुर्सी को मिस्री अवाम ही ने भारी अक्सरियत के साथ मुंतखब किया है और उनके इंतखाब पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई थी। कहा यह जा रहा है कि मिस्र के पिटे हुए सियासी मोहरे और साबिक हुकूमत की बाकियात मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए सियासी कशीदगी और कशमकश को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। मिस्र की मौजूदा तारीख पर नजर डालने से ये बात पूरी तरह से वाज़ह हो जाती है कि मिस्र में जो भी वाकयात इस तरह के हो रहे हैं, उनमें फौज का किरदार भी किसी न किसी तरह हो सकता है। जिस वक्त मोहम्मद मुर्सी ने इक्तदार अपने हाथ में लिया, उस वक्त से अब तक फौज को, जिसे अरसे दराज से मुल्की इक्तदार में बालादस्ती हासिल रही है, कदम ब कदम पीछे हटना पड़ा है। और जब सदर मुर्सी ने हुस्नी मुबारक की बरतरफी के बाद मुल्क की बागडोर संभालने वाले फौजी सरबराह हुसैन तंतावी को उनके ओहदे से बरतरफ किया था, उसी वक्त ये बात वाजह हो गई थी कि फौज, जिसका हमेशा इक्तदार में अमल दखल रहा है, अपने आप को दीवार से लगा दिए जाने के अमल को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और देर या जल्द वो अपना बदला लेकर रहेगी। फौज के साथ साथ हुस्नी मुबारक दौर की बाकियात भी इस वक्त पूरी तरह से सरगर्म है, क्योंकि उनको इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है कि नए मिस्र के सियासी मंजरनामे में उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं है। بہرحال صورتحال اگر اسی طرح جاری رہتی ہے تو یہ مصر اور مصر کے انقلاب کے لیے کسی آفت سے کم نہیں ہوگی۔
جی ناظرین، مصر کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ صورتحال یہ ہے کہ پورا مصر اس وقت دو محاذوں میں منقسم ہو چکا ہے۔ ایک محاذ صدر مرسی کے مخالفین کا ہے اور دوسرے محاذ میں ان کے حامی ہیں۔ قاہرہ میں تحریر اسکوائر پر صدر مرسی کے مخالفین کا قبضہ ہے، تو قاہرہ یونیورسٹی کے سامنے النہضہ پارک میں ان کے حامیوں کا اجتماع ہے۔ آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار طاہر واسطی صاحب سے۔ واسطی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی واسطی صاحب، مصر میں اس وقت جاری سیاسی کشمکش کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی افواج، اس کی ایکسیپشن ظاہر ہے ایران ہے اور ایک اور آدم ملک اور ہے، کہ افواج اور غیر منتخب ادارے امریکہ اور یورپ کی ان طاقتوں کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں جو عوامی انقلاب کی مخالفت کرتی رہی ہیں اور جمہوریت کے خلاف رہی ہیں۔ مصر میں چونکہ یہ انقلاب عوام لے کے آئی ہے اور عوام ہی اس انقلاب کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہی ایک جمہوری طریقے سے ایک حکومت منتخب کی ہے، ممبر آف پارلیمنٹس منتخب کیے ہیں اور اپنا صدر منتخب کیا ہے، جو ایک بڑا ریگرس طریقہ ہے مصر کا۔ اور جب یہ منتخب ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے صدر اور پارلیمنٹ اور منتخب ادارے ان تمام لوگوں کو جو جمہوریت کی ماضی میں خلاف رہے ہیں اور عوامی حکومت کے خلاف رہے ہیں، ان اداروں کی اس طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو عوام کے خلاف ہیں، جس میں فوج اور سپریم کورٹ جو مصر کی ہے وہ شامل ہے۔ اس کا پہلا ثبوت صدر مرسی نے اس وقت دیا جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں ابھی دکھایا کہ تنتاوی کو ڈسمس کیا، اس کے بعد انہوں نے چیف پروسیکیوٹر کو جنہوں نے حسنی مبارک کا ٹرائل کیا تھا ان کو ڈسمس کیا، اور ایسی بہت سی آئینی عہدوں پہ موجود افراد کو نکالا جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی تک جمہوری حکومت کو اور جمہوری اداروں کو ان کے پیرامیٹرز میں کام نہیں کرنے دے رہے۔ ایسا ہی ایک مکمل ادارہ، کانسٹیٹیوشنل آرگن جو سپریم کورٹ ہے اور فوج ہے، وہ دونوں اس بات کے بہت خلاف ہیں کہ عوامی امنگوں اور عوامی امنگوں کے ترجمان جو انقلاب آیا ہے اور صدر مرسی جو موجود ہیں، ان کو وہ کام مت کرنے دیے جائیں جس سے ان کے اپنے اختیارات میں کمی واقع ہو اور امریکہ اور یورپ کے مفادات پر زد لگے۔ جبکہ صدر مرسی جو چونکہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو عوام چاہتی ہے اور جو ملک کی جمہوریت چاہتی ہے اور جن کا وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، انہی کے وہ اکاؤنٹیبل ہیں۔ اب اس صورتحال میں صدر مرسی نے نہایت دانشمندی کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا اس خطرے کے دیکھتے ہوئے کہ خدا نخواستہ یہ اس قانون ساز اسمبلی کو اور اس آئین کو جو اب بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی سسپینڈ کر دیں۔ اب یہ دیکھیے کہ صدر مرسی کون ہے۔ صدر مرسی ایک عوامی منتخب صدر ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے ووٹ آف کانفیڈنس سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے کانفیڈنس سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خطرے کے پیش نظر اگر ایک ایسا آرڈیننس جاری کیا جس میں کہا کہ ان کے کسی حکم کو اس وقت عدالت یا کوئی اور ادارہ چیلنج نہیں کر سکتا، بنیادی طور پر یہ محمد مرسی کی بات نہیں ہے، یہ اس صدر کی بات ہو رہی ہے جو جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چنا گیا ہے ایک بہت لمبے پروسیس کے نتیجے میں۔ اب اگر صدر مرسی عوامی جمہوریت اور عوامی انقلاب کو بچانے کے لیے ایسا کوئی آرڈیننس اور ایسی کوئی ڈگری ایشو کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو مفاد ہے اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ عوام کو حاصل ہوگا، جمہوریت کو حاصل ہوگا، لیکن مصر کی جمہوری حکومت کے خلاف کرنے والے یہ دو ادارے اور وہ لوگ جو جمہوریت کے خلاف ہیں بنیادی طور پر اور جن کو امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی حاصل ہے، جو اپنے ممالک میں جمہوریت کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلامی ملک میں جب جمہوریت آتی ہے اس جمہوریت کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ और जिस वक्त ये आइन पास हो रहा था, मैं इसको बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि मैं आइन का तालिब इल्म हूँ और मैं कंपैरेटिव आइन्स को पढ़ता रहता हूँ। जिस वक्त मैंने देखा कि सदर मुर्सी के इस नए आइन में मिस्र की आवाम के बनाए हुए इस नए आइन में उम्मा का लफ्ज़ शामिल है और इस्लामी ज्यूरिसप्रूडेंस का लफ्ज़ शामिल है और मुसलमानों के आइन और मुसलमानों के दीन के अल्फाज शामिल हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये असास बनेंगे, मुझे इल्म था कि यूरोप और अमेरिका इसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा उम्मा को एक तकसीम शुदा एंटिटी देखना चाहते हैं, वो एक एंटिटी नहीं देखना चाहते। पहली मरतबा इजिप्ट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि हम एक उम्मा का हिस्सा हैं, और ये बहुत तकलीफदेह बात है बरतानिया, अमेरिका और उन प्लूरलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो समझते हैं कि मुसलमान कभी भी एक उम्मत नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मुसलमान एक उम्मत हो जाएंगे मोहम्मद मेहदी शराफत, तो इससे सबसे बड़ा खतरा इसराइल को लाहक होगा, इसका सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के मफादात और यूरोप के मफादात पे पड़ेगा। तो मेरे नज़दीक ये तमाम मुजाहरे जो इस वक्त सदर मुर्सी और इस आइन के खिलाफ हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो रहे हैं जो मिस्र की हुकूमत अडॉप्ट करना चाह रही है इस आइन के नतीजे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि के आइन की बुनियाद और कानून की बुनियाद इस्लामी असूलों पर होगी, इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस पर होगी, और मिस्र के अवाम मुस्लिम उम्मा का एक हिस्सा बनेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां इस वक्त हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार मोहम्मद अहमद काजमी साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद काजमी साहब के बारे में हम ये बताते चलें कि उनकी सहाफ़त की दुनिया में वापसी तकरीबन 8 महीने के बाद हुई है, और ये 8 महीने का ब्रेक उनका अख्तियारी नहीं था, बल्कि मुसलसल अपने कालमों में अमेरिका और सहयोनी हुकूमत की मुखालफत और मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम उम्मा की हिमायत के नतीजे में एक साजिश के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा था। सरंजाम हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। काजमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी काजमी साहब, मिस्र में नया तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब सदर मुर्सी ने एक आईनी ऑर्डिनेंस
जी,
जारी करके
वालेकुम
आईन
अस्सलाम
की
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
जी जब सदर मुर्सी ने एक आईनी ऑर्डिनेंस जारी किया और आईन की मंजूरी के लिए तहलील शुदा आइनसाज असेंबली बहाल की, और उसके साथ ऐलान किया कि उनके इस ऑर्डिनेंस को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और न ही कोई अदालत यह हक रखती है कि इसके खिलाफ फैसला दे, इसके बाद से ही नई सियासी कशमकश वहां शुरू हुई। उनके मुखालिफिन ने इस आर्डिनेंस को आमिराना करार दिया है, जबकि खुद सदर मुर्सी का कहना है कि यह आर्डिनेंस आर्जी है और इसका मकसद नए आइन के नफाज के मराहिल जल्द अज जल्द तय करना है। इस आर्डिनेंस के बारे में आपका तजिया क्या है?
मैं ये समझता हूं कि सदर मुर्सी ने जो ऑर्डिनेंस दिया है वो मुल्क की बेहतरी के लिए दिया है, कौमी मफादात के लिए दिया है, और अभी चूंकि ट्रांजिशनल एक स्टेज है, अभी वो मरहला है जहां अभी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फैसले होने हैं, बहुत अहम फैसले होने हैं। तो इस वक्त अगर कोई उन्होंने ऑर्डिनेंस दिया है तो वो बहुत बेहतर और मुनासिब दिया है, और इसकी वजह यह भी है कि अब तक वहां के जो मुल्क के मुख्तलिफ आर्म्स, मुख्तलिफ जो शोबे होते हैं, वो अपनी तरह से आजादाना तौर पर नहीं, बल्कि खुद उनका अपना तरीका था आमिराना, जिसमें उन्होंने कई इदारों को कंट्रोल करने के लिए और मुल्क की मफादात में काम करने के लिए कोशिशें शुरू की, जिसमें पहले मरहले में उन्होंने वहां के डिफेंस मिनिस्टर को तंतावी को हटाया,
और अब वो जुडिशल जो सिस्टम है वहाँ उसको भी एक कानून के तहत उसे लाने की कोशिश है, और हुकूमत के कयाम के से पहले आईन को जो फाइनल करना है, आखिरी सूरत देनी है, उसमें ऐसे मरहले में इस ट्रांजिशनल पीरियड में ये मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब कदम था। मैं जो इसमें खास बात एक बात और देख रहा हूँ वो ये कि मगरबी तजिया निगारों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मिस्र एक और अगला एक और ईरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वो कंपेयर कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं उन हालात का जिसमें 1979 में ईरान का इस्लामी इनकलाब आया था, और उस वक्त बकौल उनके वहाँ की लीडरशिप ने अपने तरीके से हुकूमत कायम की थी। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि मगरबी ताकतों के लिए बेचैनी, और उस बेचैनी के नतीजे में किसी तरह से मुरसी अपने प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट आज़ादाना हुकूमत चलाने के रास्ते पर ना चले जाएं, उसमें रखना डालने के लिए ये तहरीर स्क्वायर पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है। और मुझे इस बात का यकीन है जो अभी आप कुछ वीडियो क्लिप दिखा रहे थे उसमें ये अंदाज हो रहा था कि उतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी बड़ी तादाद कैमरों की मदद से ज्यादा दिखाई जा रही है। तो ये मगरबी ताकतें नहीं चाहती कि जिस तरह से ईरान ने अपने आप को आज़ादाना तौर पर इस पूरे खित्ते में नमूने के तौर पर पेश किया, और उसके बाद इराक में सद्दाम के बाद में हुकूमत आई, और उसको भी कहा जाता था उस वक्त के एक और ईरान बन गया है, और अब बकौल उनके ये तीसरा ईरान इस खित्ते में बन रहा है, तो उनके लिए मुश्किल और परेशानी की बात है। इसी वजह से वो 100 में से 85 मेंबरान असेंबली में मौजूद थे जिन्होंने ये जो ड्राफ्ट है उसको पास किया है, उसके बावजूद ये दुनिया में खासतौर पर मगरबी मीडिया कहना चाहता है कि ये अकलियत में है और बड़ी तादाद है जो मुखालिफ हैं, तो ये बहरहाल हकीकतें कुछ दिन बाद सामने आ जाएंगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब काजमी साहब। और नाजरीन टेलीफोन लाइन पर हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
सज्जाद मीर साहब, इस वक्त मिस्र में जो कुछ हो रहा है कि पूरा मिस्र दो महाज में तकसीम हो चुका है। एक महाज में ये मुत्तहदा महाज है सदर मुर्सी के मुखालिफिन का, और दूसरे महाज में उनके हामी है। ये महाज आ रही मिस्र को किस तरफ ले जा रही है?
असल में जी ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये होना ही था, आसान बात नहीं है। देखिए ईरान में इस्लामी इंकलाब आया तो कितने लोगों की जो थी एक तरह की चिकने पड़ी माथे पर, खुद ईरान के अंदर भी कितनी मुखालफतें हुई होंगी और उसको कैसे काबू पाया गया होगा। मुर्सी का इंकलाब उस तरह का इस्लामी इंकलाब तो नहीं है जैसा ईरान में आया था, लेकिन बहरहाल इस्लामी जमात है जिसकी बैकिंग है उन्हें इख्वान मुस्लिमीन की या और लोगों की भी जो बहुत सारे तबके हैं, और इस वजह से मगरब पहले तो परेशान था और कहता था कि ये तो जब भी इस्लाम जिस मुल्क में आता है टेररिज्म साथ लेकर आता है, दहशतगर्दी साथ लेकर आता है, अलकायदा की मिसाल दिया करता था। अब जरा मुतमिन थे कि अलकायदा तो नहीं है ये तो मॉडरेट लोग हैं, ये तो मगरब से बना के भी रखना चाहते हैं, ये तशद्दुद के लिए हुकूमत नहीं करना चाहते, आईनी ढांचे में चलना चाहते हैं, एक पूरा नक्शा खींचा था। कभी तुर्की की मिसाल देते थे, कभी दूसरी मिसाल देते थे, ट्यूनस और मराकश की मिसालें जरा थी, खासतौर पर मराकश तो बड़ा लिबरल सा था नाम, वो भी इस्लाम के तौर पर आया था। इन खित्तों का जो इस्लाम है उसके लिए एक बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है, इसमें कोई शक नहीं कि अख़वान की जद्दोजहद बहुत लंबी है और उसमें बड़ी इंकलाबी रूह भी है, लेकिन अब आके इतनी आमरियत की मारें खाई हैं उन्होंने, और जिस तरह आपका एक मजारे शुरू हुए थे उन्होंने अपने आप को अलूफ भी रखा है, अब इलेक्शन के जरिए आए हैं तो उनकी दो कुवतों से लड़ाई है, एक कुवत फौज की है और एक कुवत अदलिया की है, और फौज की कुवत के साथ तो उन्होंने जो तवक्को नहीं थी और जिस तरह उन्होंने आते ही इसके इख्तियारात को खत्म किया था और कम किया था उसको मुर्सी को लड़ना पड़ा, उसने कई जर्नैल जो थे बर्खास्त भी कर दिए। दूसरी तरफ अदलिया है, अदलिया कोई इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं है, वो हुस्नी मुबारक के जमाने की बल्कि फौज की पुष्टपनाई से कायम की हुई अदलिया है, अब उनके साथ भी उसकी लड़ाई है। अब हो ये रहा है कि वो जो पावर मांग रहे हैं वो एक आरजी पावर्स मांग रहे हैं ताकि वो अपने निजाम को इंप्लीमेंट कर सके। जाहिर ظاہر ہے کہ کچھ جمہوری فورسز, کچھ جس کو وہ سیکولرسٹ کہتے ہیں, جس کو مغرب کی شہ بھی ہے, کچھ اور قوتیں اور کچھ خاص طور پہ اسلامی قوتیں بھی جو سلفی ہیں, جو سعودی ایک مزاج کے لوگ ہیں, وہ بھی کوئی ان کے حق میں تھوڑے ہیں. اب یہ مسلمان اسلامی قوتوں کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ باہمی اختلافات کو جب میدان میں آتے ہیں تو وہ دوسری طرف بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور اس وقت لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک کوئی جیسے مسئلہ کی جنگ لڑ رہے ہوں, یا کوئی ایسا ہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا اور اس سے انہیں گزرنا پڑے گا, اور یہ بہت بڑا ایک طرح کا امتحان ہے مورسی کا بھی اور وہاں جمہوریت کے تجربے کا بھی اور وہاں اسلامی قوتوں کے مستقبل کا بھی. کیونکہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہر بار آپ الیکشن ہوں اور وہی قوتیں برسر اقتدار آئیں اور دوسرے لوگ بھی طاقت پکڑ لیتے ہیں. آپ کے ہاں بھی کاؤنٹر ریولوشنری سامنے آتے نہیں رہتے ہیں, آپ کے ہاں بھی ریفارمسٹ کے نام پر ایک موومنٹ چلتی ہے اور اس کا بھی ایک شور پڑتا ہے اور وہ بات آگے آتی ہے یا پھیلتی ہے. یہ ساری دنیا میں ہوا کرتا ہے. یہاں مورسی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کی جو حکومت ہے وہ اس طرح قائم نہیں ہوئی جس طرح اسے قائم ہونا چاہیے تھا. ابھی بہت سارے مسائل ہیں جس سے انہیں نبٹنا پڑ رہا ہے, اور اس میں سیکولر قوتیں بھی اس میں گھس گئی ہیں, کچھ اور بھی چاہتی ہیں. ظاہر ہے کہ خواہش تو وہاں سب کی یہی ہے کہ آئین جو ہو جمہوریت ہو, جمہوری ہو, اور اس جمہوری آئین کانسٹیٹیوشن کے تحت جس طرح بھی مورسی نے بنایا ہے اس پر انہوں نے ریفرینڈم کا اعلان کر دیا ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی استحکام تو نہیں آ رہا فی الحال, لیکن ریفرینڈم کا اعلان کرنا ہی ایک بہتر رویہ تھا, جس کا مطلب تھا کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے مورسی کو اپنی قوت پہ بہت ہو, ان کا خیال ہو کہ ہم جو کچھ کر رہا ہوں اس کو عوام کی ہمدردی حاصل ہوگی اور وہ ان کا ووٹ جیت حاصل کر لیں گے. ایسا ہوا تو یہ سٹیپ فارورڈ ہوگا. ہو یہ رہا ہے کہ دیکھنا یہی ہے جو لڑائی ہے, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی قوتوں کو جیتنا چاہیے, دوسری طرف اس بات کا بھی ڈر ہے مصر کے کانٹیکسٹ میں, اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے خاص طور پر شاہ کی حکومت دیکھی ہے, کہ کہیں ایک آمرانہ رویہ پھر کسی نئے حکمران میں پیدا نہ ہو جائے, اس کی مبارک کی بجائے کوئی اسلامی ڈکٹیٹر نہ آ جائے. یہ چکر تو چلتا رہے گا, اور میرا خیال میں اس کو ہمیں بڑے صبر و تحمل اور ذہانت کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا. توقع یہی ہے کہ نتائج اللہ کرے گا بہتر نکلیں گے, کیونکہ اسلام جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے بیداری کی لہر, اس نے تو بادشاہوں کے آمروں کے حکمرانوں کے تختے الٹنے شروع کر دیے ہیں. اب یہ ایک نیچرل پروسیس سے آگے جائے تو یہی بہتر ہے, اور یہی میرے خیال میں مناسب ہے.
جی بہت بہت شکریہ سجاد میر صاحب, لائن پہ رہیے گا. طاہر واسطے صاحب, جناب صدر مرسی کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آئین کا مسودہ پیش کیا گیا ہے اور جس پر ریفرینڈم کرانے کا اعلان کیا گیا ہے, یہ غیر قانونی طور پر اس کو آئین ساز اسمبلی سے منظوری لی گئی, اس لیے کہ جس آئین ساز اسمبلی نے اس کو منظوری دی ہے وہ تحلیل ہو چکی تھی, اور آرڈیننس کے ذریعے مرسی نے اس کو بحال کیا اور بحال کر کے اس سے منظوری لی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس ہی غیر قانونی ہے, اس لیے وہ اس آئین کے ریفرنڈم میں حصہ نہیں لیں گے اور اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
شکریہ محمد مہدی شرافت. دیکھیے, بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جس ڈگری کے تحت اس کو سسپینڈ کیا گیا تھا وہ ڈگری اٹ سیلف چیلنج ہو چکی ہے, اور اس ڈگری میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی سسپینشن غیر قانونی تھی.
جی,
اور اس کی سسپینشن چونکہ غیر قانونی تھی, اس کو کوئی آئین کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی, اس لیے قانون ساز اسمبلی نے وہ کام کیا جس کے لیے وہ الیکٹ کی گئی تھی, جس کے لیے اس کو ایک ٹاسک دی گئی تھی. اس ٹاسک کے مکمل ہونے کے دوران کوئی بات نہیں کہی گئی, اس کے کام کرنے پر پابندی نہیں لگائی گئی, اور وہ مستقل کام کرتی رہی. لیکن اس کام کے نتیجے میں جب ایک پروڈکٹ سامنے آئی تو یہ واپس اس کے پاس چلے گئے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, حالانکہ اس سسپینشن کی کوئی قانونی حیثیت ہے ہی نہیں, جو سپریم کورٹ نے از خود کر دی تھی. اور اسی بات کے پیش نظر صدر مرسی نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ سپریم کورٹ دوبارہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے. ایسی کوئی انجنکشن سپریم کورٹ نے نہیں دی تھی کہ جس وقت یہ آئین بن رہا تھا کہ وہ اس قانون ساز اسمبلی کو کام کرنے سے روک دے. جب اس قانون ساز اسمبلی, اس آئین ساز اسمبلی کو کام کرنے سے نہیں روکا گیا اور یہ اپنی پروڈکٹ کی تیاری میں مشغول رہی, اس وقت تو ان کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ یہ اسمبلی کا جو کام ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہو رہا ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن ان کو اس وقت مسئلہ بنا جب اس कानून साज असेंबली ने एक ऐसा आईन अवाम के सामने पेश किया जो अवाम के उमंगों की सही तर्जुमानी करता है। मैं आपकी अवाम की बेनिफिट के लिए ये इसका दो आर्टिकल खास तौर पर पढ़ना चाहूंगा, जिसमें पहला आर्टिकल जो है वो ये है कि द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद यूनिफाइड सोवरेनिटी दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट्स सिस्टम इज डेमोक्रेटिक, द इजिप्शियन नेशन इज ए पार्ट ऑफ द अरेबिक एंड इस्लामिक नेशंस, इट इज प्राउड टू बिलोंग टू द बेसिन ऑफ द नाइल एंड अफ्रीका एज वेल एज ऑफ द एशियन एक्सटेंशंस। ये एक बहुत बुनियादी बात है। और दूसरी बात जहां उन्होंने ये कहा कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन फॉर क्रिश्चियन एंड ज्यूइश इजिप्शियंस आर द मेन सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन दैट ओरिजिनेट्स देयर सिविल स्टेटस एंड रिलीजियस अफेयर्स। तो ईसाइयों को ईसाई किताब अंजील और यहूदियों को यहूदियों की किताब की सोर्स से उनके कवानीन बनाए जाएंगे, जबकि मुसलमानों के कवानीन इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के हिसाब से बनाए जाएंगे। अब जब ये चीज खुल के सामने आई है उससे इनको बहुत शदीद तकलीफ पैदा हो गई कि ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट ऑफ इस्लामिक नेशन बन रहे हैं, इस्लामिक उम्मा बन रहे हैं, और जो कानून आ रहा है वो इस्लामी आ रहा है और इस्लाम से इनकी शदीद दुश्मनी है। ये इस्लामिक लोगों को फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो इनको इस बात की बहुत शदीद तकलीफ हुई है कि जो खूबसूरत इस्लाम का चेहरा सदर मुर्सी लेके आना चाहते हैं इस आईन की रोशनी में, उससे लोगों पर इस्लाम का अच्छा असर पड़ेगा और वो लोगों को उनके हकूक देंगे, ईसाइयों को ईसाइयों की किताब के मुताबिक उनके हकूक मिलेंगे, यहूदियों को यहूदियों की किताब के मुताबिक उनके हकूक मिलेंगे, और मुसलमानों को उनकी मुसलमानों की किताब के मुताबिक हकूक मिलेंगे। अब इसके अंदर किसको तकलीफ हो सकती है? उनको तो तकलीफ नहीं हो सकती जो ईसाई वहां हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी जो यहूदी वहां हैं, उनको तकलीफ होगी जो इस किस्म का इस्लाम का चेहरा आवाम के सामने नहीं दिखाना चाहते थे। वो इस्लाम को एक फेरेंटिक्स का रिलीजन दिखाना चाहते हैं, वो ऐसा रिलीजन दिखाना चाहते थे जहां पर किसी को किसी के हकूक नहीं मिलते, जबकि सदर मुर्सी के इस नए आईन में उन तमाम इस्तेमाली कुव्वतों को जिल्लत का और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल में इसकी कोई हैसियत नहीं है इस बात की यह कहना कि ये उस कानून साज असेंबली ने बनाया है जो मुअत्तल की गई थी, कहीं इस बात का ऐसा हुक्म मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये पता लगे कि कानून साज आइन साज असेंबली को उसको काम करने से रोक दिया गया है। इस डिग्री को, इस हुक्म को चैलेंज किया गया था और कानून साज असेंबली को काम करने से नहीं रोका गया था, तो इस बात की कोई हैसियत नहीं है। अब अगर इस बात में कोई शक व शुबा मौजूद था भी, तो जब ये आइन बन चुका, इसकी 235 आर्टिकल्स को जो पार्लियामेंट है उस पर बहस हो चुकी, एक एक शिक को पढ़ा जा चुका, और सदर मुर्सी ने यह ऐलान कर दिया कि चाहे यह कानून साज असेंबली उस कानून साज असेंबली ने बनाया जो मुअत्तल था या मुअत्तल नहीं था, हम इस कानून को आवाम के सामने पेश करते हैं और अगर रेफरेंडम में यह कानून पास हो जाता है तो इस दावे की सरासर कोई बुनियाद नहीं रहेगी कि यह किस असेंबली ने बनाया है, आया वो मुअत्तल शुदा असेंबली थी या मुअत्तल शुदा असेंबली नहीं थी। क्योंकि अगर अवाम ने 15 दिसंबर के रेफरेंडम में, जो कि इंशाल्लाह ताला इसको पास करेंगे, इसके हक में वोट दिया, तो इन कानूनी मुशगाफियों की कोई हैसियत नहीं रहेगी और ये आईन इजिप्ट का मुस्तकबिल लिखेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काजमी साहब, सदर मुर्सी के मुखालिफिन उन पर आमिरियत का इल्जाम लगा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, वो आमरियत का इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि अब से पहले हुस्ने मुबारक की आमरियत के खिलाफ लोग अभी कुछ दिन पहले खड़े थे। वो चाहते हैं कि मुर्सी के खिलाफ भी उसी किस्म के जज्बात पैदा हो जाएं, बगैर ये देखे कि मुर्सी हुकूमत कैसे चलाते हैं। अब मुर्सी ने यह तो जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी बाहर के प्रेशर को या ऐसे मुखालिफिन को जिनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है उसके दबाव में आकर के वो कोई अपना रास्ता बदलेंगे। जब ये बात साफ हो चुकी है कि 100 में से 85 मेंबर्स असेंबली में उन्होंने एक ड्राफ्ट पास किया है और वो अब 15 दिसंबर को रेफरेंडम करा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मुखालिफीन को अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये मगरबी ताकतें जो कुछ कहेंगी, जो ये नाम निहाद जो मुखालिफीन हैं जिनकी तादाद मैं नहीं समझता कि उतनी काबिल जिक्र होगी, चूंकि पार्लियामेंट में भी 100 में से 85 ने इसकी हिमायत की है, तो आवाम भी मैं समझता हूं कि उतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, और ये महज प्रोपेगंडा है मगरबी, वो इस बात से डरे हुए हैं कि मिस्र एक आजाद हुकूमत ना बने और वो आजादाना तौर पर अपने फैसले खुद ना करें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आप लाइन पर हैं जनाब?
जी बिल्कुल जनाब बिल्कुल।
जी ये जो सदर मुर्सी के मुखालिफीन का इल्जाम है उन पर आमिरियत का, इस बारे में आपका तज्जिया क्या है?
देखें जी, बात यह है कि आमरियत और जमहूरियत की लड़ाई में आप जो कुछ भी कह सकते हैं, इस वक्त तो सूरत हाल ये हुई कि जब उनके इलेक्शन हो रहे थे और अभी सदर के इलेक्शन का आखिरी मरहला नहीं आया था, ऐलान नहीं हुआ था, माफ कीजिएगा, उससे सिर्फ चंद दिन पहले ही ये जो अदलिया है, मैं नाम नहाद तो नहीं कहता, जो भी अदलिया है उसने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया, और तहलील करने के बाद फौज ने उस पर अमल दरामद कर दिया। एक गठजोड़ था जो अदलिया और फौज के दरमियान मौजूद था, हुस्नी मुबारक की वो लेगेसी जो दो एग्जिस्ट करती थी, लेगेसी तो वो आमरियत की थी, दुख तो आमरियत को हो रहा है जिस फरमाया वाज साहब ने कि ये बिल्कुल एक जमहूरियत आने से ये लोग परेशान है कि एक जमहूरी आइन आ रहा है, एक इस्लामी आइन आ रहा है, अकलियतें भी उससे मुतमिन है, ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही कि वो जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है उनकी तरफ से गोया इससे प्रोटेस्ट हो रहा है या कुछ कहा जा रहा है। ये जो लिबरल सेकुलर ये सारा ग्रुप होता है, इनका इकट्ठा अगर कोई होता भी है तो ये एक सियासी जदोजहद जो कर रहे हैं, और दुरुस्त तौर पर बड़ी वाजे अक्सरियत के साथ ये कानून पास हुआ है। अच्छा, वो उस असेंबली से पास ना कराते तो किससे कराते? यानी कोई और अदारा है वो कहें कि ये तो गलत थी कि आप किससे पास कराएं, आप कहें कि दूसरे इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कौन कराए, और इलेक्शन कराने तक कौन सा दस्तूर हो और कौन सा आइन हो और कौन सा कानून हो जो दापत रहे? ये सारे टीथिंग प्रॉब्लम है जो हुआ करते हैं, और इस वक्त जो भी असेंबली जो भी अदारा मौजूद था, मुर्सी ने उसको आते ही बहाल कर दिया था, जिस पर बड़ा शोर पड़ा, अदालत ने भी कहा और पार्लियामेंट, देख लीजिए बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब सारा प्रोसेस हो गया, आइन पास कर लिया गया और उस पर अक्सरियत हासिल हो गई, अब आप किस चीज पे एतराज कर रहे हैं, अब आप क्या कह रहे हैं? उसने ये भी नहीं कहा कि नाफज कर रहा हूं, उसने कहा जा रहा हूं आवाम के पास रेफरेंडम कराने के लिए। तो ये इतनी बड़ी जो सारी एक्सरसाइज है वो खुद ये बताने के लिए काफी है कि मुर्सी एक जमहूरी रस्ते को इख्तियार किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ अदलिया के हवाले से कुछ इख्तियार लिए भी थे तो इसलिए कि वो हुस्नी मुबारक की एजेंसी है, उसकी जो उसकी आमराना इख्तियार की जो वारिस है उसकी बनाई हुई फौज को तो उन्होंने टेम किया, काबू किया, हालांकि फौज का मसला ज्यादा अहम नजर आता था कि इसराइल की मौजूदगी की वजह से मिस्री फौज की बड़ी अहमियत है अमरीका की नज़र में भी और सब लोगों की नज़र में भी, और वो इसको नहीं करने देंगे कुछ, लेकिन उन्होंने किया, हिम्मत दिखाई, गजा के मसले पर जाकर उनकी इंटरवेंशन से और काम करने के अंदाज से उनको आदमी स्टेटस भी हासिल हुआ और अहमियत भी हासिल हुई। तो अब इन सब लोगों को लगता है कि ये तो लीडर बनता जा रहा है, अब जब इसने अदलिया के मामले को भी जरा साफ कर दिया, ठीक कर दिया, आयन को नाफज कर दिया और आयन चल पड़ा, और इस बात की अदलिया को इजाजत न दी कि वो इस अवामी फैसले को रद्द कर सकें या तोड़ सकें, और एक सिस्टम कायम हो गया, तो फिर उनके ख्याल में उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, इसलिए वो हरासा है, परेशान है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये अमल हो जाता है और सचमुच मुर्सी जो है रेफरेंडम के तौर पर इस आयन को नाफज कर लेते हैं, तो अगर वहां कोई जमहूरी कुवत मौजूद है तो उन कुवतों को फिर उस आयन के मुताबिक आगे चलना चाहिए, और अगर वो आयन नामनासिब है तो उसको तब्दील करने के लिए एक जमहूरी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये हुस्नी मुबारक नहीं बन सकते, मुर्सी जो है ये इनके बारे में ये तवक्को करना कि वो आमरियत जो नासर अनवारुल सादात और हुस्नी मुबारक लेकर आएंगे उसका कोई याद करेंगे नहीं, ये उसके खिलाफ एक जदोजहद है। ये चाहते ये हैं कि वहां के आइन को आमरों की बाकियात से बचाकर और इस तरह लाया जाए कि एक जमहूरी कदरों के साथ इस्लामी कदरों के साथ उसको इस्तवार किया जाए। हम इस स्ट्रगल में गुजरे हैं, पाकिस्तान अपने क्याम से लेकर कई बार इस मरहले से गुजरा है जब उसे इस तरह की जदोजहद करनी पड़ी है। ईरान के लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ है कि किस तरह वो इस सूरत हाल से गुजरते रहे हैं और गुजरे हैं, कैसे कैसे मुश्किल वक्त और लम्हे उन पर आए हैं। यही नहीं, मैंने जमहूरी तजर्बे की ये बात करते हैं, आजकल तुर्की की बड़ी मिसाल देते हैं, ترک میں سے 9-10 سال سے کس طرح گزر رہے ہیں اور کس طریقے سے کتنے الزامات سے سیکولرسٹوں کے, اور وہ کس طرح, وہ تو خیر اپنا ان کا محتاط اور اعتدال کا انداز کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن ایک یہ ساری اسٹرگل آج میں اسلام میں جاری ہے. الجزائر میں فوج کی مدد سے انہوں نے سارے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا. تو یہ جو استعمار کی قوتیں اس طرح کر رہی ہیں اور تاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ جہاں جمہوریت کے دور پر اسلام آ رہا ہے یا مسلمان آ رہے ہیں, کسی حد تک بھی صحیح, وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, تھوڑا بہت اسلام نافذ کر رہے ہیں یا پورے کا پورا کر رہے ہیں یا کچھ اعتدال کے ساتھ کر رہے ہیں یا کمپرومائز کے ساتھ کر رہے ہیں, کچھ بھی کہہ لیجئے, ان کو وہ بھی گوارا نہیں ہے. ایک طرف تو ان کو القاعدہ گوارا نہیں ہے اور یہ خوش ہیں کہ چلو یہ جمہوری رستوں سے لوگ آ رہے ہیں, دوسری طرف پریشان ہیں کہ یہ آ کر کون سی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں. مراکش سے خود خوش ہیں کہ ابھی اسلام کے نام پر آئے تھے لیکن انہوں نے بکنی پہننے کی اجازت دے دی, انہوں نے یہ اجازت سود کو بھی ختم کرنے کی بات نہیں کی, اور یہ بھی کیا کہ سور کا گوشت بھی وہاں ملے گا. تو ساری باتیں کرنے پر, یعنی اس کو وہ لبرلزم کہتے ہیں, اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ مغرب بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا ایسا ایسا کہ اسلامی قوتیں جو ایسا ایسا امرج کر کے اپنی پہچان کرنا چاہتی ہیں ان کو تسلیم بھی کیا جائے اور ان کو مانا بھی جائے.
جی بہت بہت شکریہ واسطی صاحب. جناب یہ جو آئین ہے اس کو منظوری دی آئین ساز اسمبلی نے اور صدر نے اس کی توثیق کر دی ہے اور اس پر ریفرینڈم کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس آئین کی کچھ باتیں آپ نے بتائیں کہ اس میں مصر میں موجود جتنے بھی طبقات ہیں سب کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس آئین میں پارلیمنٹ کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں, صدر کے اختیارات کم کیے گئے ہیں, اسی کے ساتھ صدارت کی جو مدت ہے وہ بھی کم کر کے 4 سال کر دی گئی ہے, اور یہ قید بھی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص لگاتار 2 بار سے زائد صدر منتخب نہیں ہو سکتا ہے. کیا اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدر مرسی آمریت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اپنے اختیارات بڑھا رہے ہیں؟
دیکھیے محمد مہدی شرافت, اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں بات ہے
جی.
وہ یہ ہے کہ دا پولیٹیکل سسٹم از بیسڈ آن پرنسپلز آف ڈیموکریسی اینڈ شورا
جی.
اب اگر ایران کا آئین یہ کہتا ہے کہ پرنسپلز آف ڈیموکریسی اور جو شورا ہے وہ اس آئین کی بنیاد ہوگا اور اساس ہوگا, تو ڈکٹیٹرشپ کہاں سے نکل کے آ گئی؟ چونکہ ڈکٹیٹرشپ وہ پسندیدہ چیز ہے جو امریکہ اور ویسٹ کو بھاتی ہے مسلمان ممالک میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ڈکٹیٹرشپ کے بہت شدید خلاف ہو چکی ہے, تو وہ ایک منتخب لیڈر کو جو جمہوری قوتوں پر اعتماد رکھنا چاہتا ہے, جو ایسا آئین بنا رہا ہے جس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کی اساس ڈیموکریسی ہوگی اور شورا ہوگی, اس صدر کو وہ اس لیے ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں چونکہ عوام اب ڈکٹیٹروں سے اکتا چکی ہے, عوام اب ڈکٹیٹروں سے نفرت کرتی ہے, اب وہ اس بد گندے نام کو اس خوبصورت شخصیت کو دینا چاہ رہے ہیں جو ڈیموکریسی لے کے آنا چاہ رہا ہے. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیو اے بیڈ نیم ٹو سم تھنگ اینڈ کل اٹ, تو اس صورتحال میں وہ صدر مرسی کو ایسا ڈکٹیٹر کہنا چاہ رہے ہیں جس نے تمام طاقتیں اپنے تئیں لے لی ہوں. لیکن اب تو میڈیا آزاد ہے, جو لوگ اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ صدر جس نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے دیے ہوں, وہ صدر جو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ کہہ رہا ہو کہ اس آئین کی بنیاد جمہوریت اور شورا ہے, وہ صدر جو یہ کہہ رہا ہو کہ اس آئین کی بنیاد اسلام ہے, وہ صدر جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو سپریم کورٹ ہے اس کا ممبر ہوں گا, اس کو ڈکٹیٹر کہنا کس طرح سے بنتا ہے؟ تو یہ صرف ایک غلط نام دینا, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت ڈکٹیٹروں سے اکتائے ہوئے ہیں تو شاید موومنٹ اس بات سے آگے بڑھے اگر ہم یہ کہیں کہ صدر مرسی ایک ڈکٹیٹر بن گئے ہیں. حالانکہ جب عوام کے سامنے ایک آئین پڑھا جائے گا, لوگوں میں اس بات کو ڈسکس کیا جائے گا, تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ڈکٹیٹر اپنے اختیارات میں اضافہ کرتے ہیں, اپنے اختیارات کو عوام کو نہیں دیتے. ڈکٹیٹر ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے, ڈکٹیٹر شورائی نظام کی بات نہیں کرتے, لیکن اس نظام میں جو صدر مرسی لے کے آ رہے ہیں شورائی نظام کی بات ہے, ڈیموکریسی کی بات ہے, پارلیمنٹ کی بات ہے, اختیارات کو پارلیمنٹ کو دینے کی بات ہے, اور عوامی امنگوں کو عوام کے نتیجے میں جو انقلاب آیا ان کو ان کی امنگوں پہ پورا اترنے کی بات ہے. तो डिक्टेटर्स तो आवाम के खिलाफ बात करते हैं, डिक्टेटर तो उन चंद ताकतों के हक की बात करते हैं जो उसको हुकूमत में लेके आती हैं। चूंकि मुसलमान मुमालिक में अक्सर हुकूमतों के जो डिक्टेटर्स हैं उनको बरतानिया, यूरोप और अमेरिका अपने मफादात के लिए लेके आता है, तो वो हमेशा अमेरिका, बरतानिया और इनके थ्रू इसराइल के मफादात की हिफाजत करता है। अब चूंकि मिस्र में इस वक्त जो सदर है उसे अवाम लेके आई है, अब वो पार्लियामेंट उसे अवाम लेके आई है, तो जाहिर है वो अवामी उमंगों की हिफाजत करेगा और अवाम को उनके जो वो चाहते हैं वो देगा, तो ये वैस को कबूल नहीं है, इसलिए वो इसको डिक्टेटर कह रहे हैं। हालांकि इसमें डिक्टेटरशिप की कोई बात नहीं है, इंतहाई डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस वक्त ड्राफ्ट किया गया है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रेफरेंडम में इस अमल की वजह से एक जमहूरियत मजबूत होगी और सदर मुर्सी जो हैं वो आवाम को वो कुछ दे सकेंगे जो आवाम चाहती थी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी काजमी साहब, सदर मुर्सी ने आने के बाद आप देखिए कि मिस्र में अनवर सादात से लेके हुस्नी मुबारक के जवाल तक फौज मरकज में रही है, फौज का किरदार मरकजी रहा है। सदर मुर्सी ने आहिस्ता आहिस्ता फौज का किरदार कम किया और इख्तदार से उनको बिल्कुल हटा दिया। मौजूदा बहरान में इस बात का कितना इम्कान है कि इसके पीछे फौजी लीडरशिप हो?
फौजी लीडरशिप बराह रास्त इसके पीछे हो, इसका तो अभी वक्त के साथ कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजह है कि जो मगरबी ताकतें हैं या जो गुज़िश्ता हुकूमत के बाकियात जिन्हें कहा गया, वो जो अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म के मानी वहां पर मगरिब नवाज होने की बात है, तो वो लोग हैं जो सदर मुर्सी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वही लोग हैं जो सदर मुर्सी को डिक्टेटर होने की बात का इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दाखिली तौर पर तो सदर मुर्सी ने फौज को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है और उस तरफ से कोई खुलकर के कोई बात सामने नहीं आ रही, और अभी तक जो यूनिवर्सिटी के सामने जो मुर्सी के हक में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उस पर भी कोई शिद्दत से कोई कार्रवाई, फौजी कार्रवाई वगैरह अभी तक कोई नहीं नजर आ रही। तो मैं समझता हूं कि ये अभी दाखली सिर्फ दाखली मामलात नहीं है बल्कि बैरूनी ताकतें वहां पर कोशा हैं कि सदर मुर्सी कामयाब ना हो। उसकी एक बड़ी वजह और ये है कि जब से हुस्नी मुबारक की हुकूमत खत्म हुई है उसके बाद काहिरा में इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, आपको याद होगा, उनके सिफारत खाने को बंद करना पड़ा था उन्हें, और कई बार इसराइल को जो गैस सप्लाई लाइन है, पाइपलाइन, उस पर कई बार हमले हो चुके हैं और अवामी सतह पर इस बात का मुतालबा अक्सर होता रहा है हुस्नी मुबारक के बाद में कि मिस्र इसराइल के साथ जो अमन मुआहदा है उसे खत्म करे। तो बहरहाल कोई भी हुकूमत जो आजाद होकर के सोचेगी, जो खारजी ताकतों से आजाद रहना चाहेगी, वो जाहिर है अपने अवाम की मकसद और उनके मफाद में फैसले लेगी। हो सकता है उसमें कोई फैसला ये भी हो कि इसराइल से दूरी और उसके साथ जो अमन मुआहदा वो खत्म हो। तो बहरहाल वो मुख्तलिफ किस्म की वो ताकतें हैं जो मगरबी अनासिर या मगरबी हुकूमतों से मुतासिर हैं और वहाँ उस इलाके में अमरीका और इसराइल के हक में काम करने वाले जो अनासिर हैं वो दाखिली भी हो सकते हैं और खारजी भी, वो सभी इस कोशिश में हैं कि मुर्सी मजबूत ना हो और यहाँ कोई अवामी रेफरेंडम भी ना हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब अवाम खुद अपनी पसंद जाहिर कर देंगे और इन सभी ताकतों को अपने मुंह की खाना पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, और इसी के साथ हम ताहिर वास्ती और सज्जाद मीर साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल इस वक्त मिस्र की जो दाखिली सूरत हाल है, अगर वो बहुत हद तक तश्वीशनाक है, बैरूनी साजिश भी इसमें कार फरमा है और सदर मुर्सी के खिलाफ वहाँ का जो मजहब मुखालिफ लादीन तबका है वो भी, और जो साबिक डिक्टेटर की बाकियात हैं वो सब मुत्तहिद हो चुके हैं। इसी के साथ अमेरिका और इसराइल नवाज तबका भी उनके खिलाफ कमर बस्ता हो चुका है, और देखना यह है कि सदर मुर्सी और उनकी हामी जमात इस सूरत हाल से किस तरह निपटती है। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।